ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पात्र रविवार 21 अगस्त 2022 के लिए है। विषय मन स्वर्णपथ निर्गमान। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। उत्तरदायी ध्यान मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सूर्या में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को जो नए नए प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं और मिर्गी वालों और झोले के मारे हुओं को उसके पास लाए और उसने उनको ठीक किया। जब वो भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। और मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वो उसे ठीक नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया कि हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने उसे झिड़का और दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी ठीक हो गया। पाठ उपदेश बाइबल में से सभोपदेशक। मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि के विषय में जान लूं, कि खोज निकालूं और उसका भेद जानूं, और दुष्टता की मूर्खता और मूर्खता जो निरा बावलापन है जानूं। देखो, मैंने केवल ये बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया है। भजन संहिता। हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख के मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। दानियल। ये सब कुछ नबूकदनज़र राजा पर घट गया। 12 महीने बीतने पर जब वो बाबल के राजा भवन के छत पर टहल रहा था, तब वो कहने लगा, क्या ये बड़ा बाबल नहीं है जिसे मैंने ही अपने बल और सामर्थ्य से राजा निवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। ये वचन राजा के मुंह से निकल भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे नबूकदनज़र राजा, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है कि राजे तेरे हाथ से निकल गया, जब तक कि तू ये ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। उसी घड़ी ये वचन नबूकदनज़र राजा के विषय में पूरा हुआ। वो मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के नियन घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओस से भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के चुंगलों के समान बढ़ गए। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनज़र ने अपनी आँखें स्वर्ग की ओर उठाईं और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवत है उसकी स्तुति और महिमा ये कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। उसी समय मेरी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मेरा मुकुट मुझ पर फिर आ गया और मेरे मंत्री और मेरे प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनज़र स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे हैं। यर्मिया। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की ये वाणी है, और बुद्धाई से लौटा ले आऊंगा। यशाया। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति से रक्षा करता है। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवा और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे, परंतु तेरी कृपा से हम तेरे ही नाम का गुणानुवाद करेंगे। तूने उनका विचार करके उनको ऐसा नाश किया कि वो फिर स्मरण में ना आएंगे। लुका। फिर यीशु आत्मा की समर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। लुका। इसके बाद वो नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। फिर वो ग्रासीनियों के देश में पहुंचे, जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला, जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं और बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वो यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि वो उस मनुष्य में से अशुद्ध आत्मा को निकल जाने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वो उस पर बार बार प्रबल होती थी। और यद्यपि लोग उसे संगलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वो बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत सी आत्माएं उसमें प्रवेश कर गई थीं और उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह घड़े में जाने की आज्ञा ना दे। वहां पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, सो उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें प्रवेश करने दे, सो उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्ट आत्माएं मनुष्य में से निकलकर सूरों में गईं और वह झुंड कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा गिरा और डूब गया। चरवाहे ये जो हुआ था देखकर भागे और लोग ये जो हुआ था उसके देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकली थीं उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और साचित बैठे हुए पाकर डर गए। जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकली थीं वो उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर को लौट जा और लोगों से कह दे कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। इब्रानियों। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवत और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता जाता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है, और सृष्टि की कोई वास्तु उससे छुपी नहीं है, वरुण जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वास्तुएं खुली और बेपर्दा हैं। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें, कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। रोमियो। जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं वो हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई, ताकि तुम एक मन और एक मुंह होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की बड़ाई करो। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। इस विज्ञान की पहली मांग है दूसरों को ईश्वर करके न मानना। इस आज्ञा का ये अर्थ है, आपके पास कोई बुद्धि नहीं, कोई जीवन नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, कोई सत्य नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, इसके अलावा जो आध्यात्मिक है। ये अच्छी तरह समझ जाना चाहिए कि सभी पुरुषों का एक मन, एक ईश्वर और पिता, एक जीवन, सत्य और प्रेम होता है। कोई अन्य देवता नहीं, कोई दूसरा नहीं, बल्कि एक ही मार्गदर्शक का मन मनुष्य ईश्वर की समानता है, शुद्ध और शाश्वत है, और उसके पास वो मन है जो मसीह में भी था। परमेश्वर, महान मैं हूँ, सर्वज्ञान, सर्वदर्शन, सर्विकाय, सर्वप्रिय और शाश्वत, सिद्धांत, मन, अंत, आत्मा, जिंदगी, सत्य, प्रेम, सभी पदार्थ, बुद्धि। देवता, ये विश्वास के अनंत मन सीमित रूपों में है, मस्तिष्क, तंत्रिका, पदार्थ में विद्यमान, विभिन्न सिद्धांत जो मन का भावतिक अर्थ मानते हैं, संदिग्ध दिमाग या आत्माएं, अंदर या बाहर का पदार्थ, गलत और नश्वर। समय आ गया है कि अनंत और भावतिक शरीर की मन की सीट के रूप में एक सीमित अवधारणा के लिए बुद्धि की दिव्य भावना और उसकी अभिव्यक्तियों को जगह दी जाए, बेहतर समझ के लिए कि विज्ञान सर्वोच्च होने के लिए दिव्य सिद्धांत या विचार देता है। नश्वर कला की नींव मनुष्य की उत्पत्ति का एक गलत अर्थ है, ठीक से शुरू करने के लिए सही तरीके से समाप्त करना है। हर अवधारणा जो मस्तिष्क से शुरू होती है, मिथ्याया से शुरू होती है। ईश्वराय मन ही अस्तित्व का एकमात्र कारण या सिद्धांत है। कारण पदार्थ में, नश्वर मन में या भावतिक रूपों में मौजूद नहीं है। मुर्दे अहंकारी हैं, वो खुद को स्वतंत्र कार्यकर्ता, व्यक्तिगत लेखक, यहाँ तक कि किसी चीज के विशेष अधिकार प्राप्त प्रवर्तीक मानते हैं, जिसे देवता नहीं बना सकते या नहीं बनाया। ये समझ के अहंकार मन है और ये कि एक मन या बुद्धि है, एक बार में नश्वर्थ की तरुतियों को नष्ट करने और अमर भावना की सच्चाई की आपूर्ति करने के लिए शुरू होता है। ये समझ शरीर को सामंजस्य पूर्ण बनाती है। ये तंत्रकायों, हड्डियों, मस्तिष्क इत्यादि को मालिक की बजाय नौकर बनाती है। मस्तिष्क भगवान के मनुष्य का कोई विचार नहीं दे सकता, ये मन का कोई संज्ञान नहीं ले सकता। पदार्थ अनंत मन का एक अंग नहीं है। मानव विचार को स्वयं भावतिकता और बंधन से मुक्त करना होगा। इसे अवसर, हृदय या फेफड़ों से नहीं पूछना चाहिए, जीवन के लिए मनुष्य की संभावनाएं क्या हैं। मन असहाय नहीं है, बुद्धि के समक्ष बुद्धिमता मुख नहीं है। मन ईश्वर, आत्माओं की सौगंध, बुद्धि का वातावरण भेजता है। ये विश्वास के खोपड़ी के नीचे एक गुद्देदार एक पदार्थ मन है, बुद्धि का उपहास है, मन की नकल है। पदार्थ के तथाकथित नियम कुछ और नहीं बल्कि झूठी मान्यताएं हैं कि बुद्धि और जीवन वहां मौजूद हैं जहां मन नहीं है। ये झूठे विश्वास सभी पापों और बीमारियों का कारण बनते हैं। विपरीत सत्य की बुद्धि और जीवन आध्यात्मिक हैं, कभी भावतिक नहीं। पाप बीमारी और मृत्यु को नष्ट करते हैं। जब परमेश्वर बीमारियों या पापों को ठीक करता है तो उन्हें उस महान लाभ को जानना चाहिए जो मन ने घड़ा है। उन्हें नश्वर मन के महान भ्रम को भी जानना चाहिए जब ये इन्हें बीमार या पापी बनाता है। बहुत से लोग दिव्य मन में अच्छे निवासी की शक्ति के लिए, लोगों की आंखें खोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो मानव विचार में बुराई को इंगित करने के लिए तैयार नहीं हैं और बुराई को पूरा करने के लिए, बुराई के छुपे हुए मानसिक तरीकों को उजागर करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये पिछड़ापन, बुराई से बचने के लिए जोखिम क्यों आवश्यक है? सभी पाप अलग अलग स्तर का पागलपन है। मसीही वैज्ञानिक रूप से ये समझते हुए कि सब कुछ मन है जो मानसिक कारण से शुरू होता है, होने का सत्य त्रुटि को नष्ट करने के लिए है। ये सुधारात्मक परिवर्तनकारी है जो मानव प्रणाली के हर हिस्से तक पहुंचता है। पवित्र शास्त्र के अनुसार ये जोड़ों और गुद्दे की खोज करता है और ये मनुष्य के सामंजस्य को पुनर्स्थापित करता है। शरीर की कोई भी असामान्य स्थिति या विक्षोभ सीधे नश्वर मन की क्रिया है, जैसे कि डिमेंशिया या पागलपन है। ये दर्ज है कि एक बार यीशु ने एक बीमारी का नाम पूछा था, एक बीमारी जिसे आधुनिक लोग मानव भ्रंश कहते हैं। दानव या दुष्ट ने जवाब दिया कि उनका नाम भीड़ था। उसके बाद यीशु ने अशुद्ध आत्मा को निकाल दिया और पागल आदमी को बदल कर ठीक कर दिया। अंजील ये बताते हुए दिखाई देती है कि यीशु खुद अशुद्धता को प्रकट होने और नष्ट करने का कारण बना। सभी बीमारी का कारण और आधार भय, अज्ञानता या पाप है। रोग हमेशा एक झूठी भावना से प्रेरित होता है जो मानसिक रूप से मनोरंजन करती है, नष्ट नहीं होती। यीशु ने कभी भी बीमारी को खतरनाक या ठीक होने वाली नहीं कहा, जबकि उनके छात्र उनके पास एक ऐसा मामला लेकर आए जिसे वो ठीक करने में असफल रहे थे, तो उसने उनसे कहा, हे विश्वासहीन पीढ़ी, ये कहते हुए कि ठीक करने की उपेक्षा शक्ति मन में होती है। पागलपन का उपचार विशेष रूप से दिलचस्प है, हालांकि मामला बड़ा है। ये सच्चाई के शुद्ध कार्य के लिए अधिकांश रोगों की तुलना में अधिक आसानी से उपज देता है, जो त्रुटि का प्रतिकार करता है। पागलपन का इलाज करने में दी जाने वाली दलीलें अन्य बीमारियों की तरह ही हैं, अर्थात वो असंभावना जो मस्तिष्क को नियंत्रित या विचलित कर सकती है या पीड़ित कर सकती है। ये भी तथ्य कि सत्य और प्रेम, स्वस्थ राज्य, मार्गदर्शित और शासित नश्वर मन या रोगी के विचार को शापित करेंगे और सभी त्रुटि को नष्ट कर देंगे, चाहे इसे मानव भ्रंश, घरना या कोई अन्य कला कहा जाए। याद रखे, दिमाग दिमाग नहीं है, सामग्री बीमार नहीं हो सकती है और मन अमर है। मनुष्य साहित्य ब्रह्मांड पर मन का नियंत्रण अब एक खुला प्रश्न नहीं है, बल्कि विज्ञान है। दिव्य बुद्धि द्वारा नियंत्रित मनुष्य समान जैसा पूर्ण और शाश्वत है। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम, ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, पारोपकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परमाश देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।